Siddhedevya. Om Namah Siddhedevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Moksha Margasya Netaram Bhittaram Karma Bhubhrutam Gyataram Vishvatattvanam Vande Tadguna Labdhaye. आचार्य उमा स्वामी विरचित ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसका दूसरा अध्याय चल रहा है अपना, और उसमें जीव के पांच असाधारण भावों संबंधी चर्चा चल रही है। यहां टीका में ये जो पृष्ठ संख्या 183 है, हिंदी में 183, कल हम पढ़ रहे थे ना कि प्रश्न ऐसा था कि प्रत्येक जीव में अनादिकाल से पारिणामिक भाव है, फिर भी उसे औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट होता, ये प्रश्न था। उसका उत्तर हमने कल देखना प्रारंभ किया था कि वह अज्ञानी है और यह नहीं मानता कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, यानी मैं स्वयं पारिणामिक भाव रूप हूं, इस बात का उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और शरीर मैं हूं, शरीर के अनुकूल जो सामग्री है वो मुझे इष्ट है, वो मेरी है, वो मुझे प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे पर पदार्थों में अपनापन और मेरापन उसका चल रहा है, यानी उसका झुकाव कहां चल रहा है, पर वस्तुओं में, शरीर में और रागादि भावों में, विकारी भावों को अपना मानता है, और विकारी भाव करने से मेरा अविकारी भाव यानी वितराग भाव प्रकट होगा, ये अभिप्राय में उसके पड़ा हुआ है। विकारी भाव होते रहेंगे, वो नहीं छूटेंगे, ऐसे नहीं कि पहले विकारी भाव नष्ट हो जाएंगे पूरे और फिर जीव वितराग होगा, होगा तो सही, परंतु विकारी भाव होते हुए उससे भेद ज्ञान करना ये पहली स्टेप है। राग को नष्ट करना, अरे पर नष्ट कैसे करना, तो उसके पहले की स्टेज है राग को अपने से भिन्न मानना, अपना मैंपना पारिणामिक भाव में हम स्थापित करते हैं तो बाकी पर्याय रूप जो भाव है उसमें अहमपना, उसमें मेरापना, उसमें स्वामी, क्योंकि हमने उसको अभी गौण कर दिया है। पर्याय में विकार होते हुए भी, होते हुए विकारों को अपने से भिन्न पहले जानना है। जिस समय क्रोध परिणाम है उस समय वो क्रोध को जानने वाला मैं हूं, ये मेरा कायमी स्वभाव नहीं है, वो आने जाने वाले भाव है, मैं उस रूप नहीं हूं, इसको स्वीकार करना है। ये बात जीव को छूट जाती है, रहस्य उसको ख्याल में नहीं आता है, और उसकी सारी कोशिश वो राग द्वेष को मैं कैसे कम करूं इस बात पर चली जाती है। राग द्वेष के परिणाम ऐसे कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, परंतु जब तक उस राग का स्वामीपना बना रहता है तब तक उस जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ये चाहिए वाली बात है ना, मुझे पुण्य करना चाहिए ना, पुण्य हो पाप हो कोई बात नहीं, परंतु जब तक उसका स्वामीपना है जीव को, मैं करता हूं वैसा होता है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, और मैं करूं तब होता है, ये मेरा कायमी स्वभाव है, ऐसे जब तक उसकी मिथ्या बुद्धि है तब तक वो अनंतानुबंधी वाले ही रहते हैं, भले वो मंद भी हो जावे तो भी वो, उसकी क्वालिटी कौन सी है, अनंतानुबंधी वाली। तो मात्र कषाय मंद होने से उसका वो अनंतानुबंधीपना नहीं टल सकता, क्योंकि अनंतानुबंधी वाले जो विकार है, जो क्रोध मान माया लोभ है, वो तीव्र भी हो सकते हैं जिसको हम कृष्ण लेशा के परिणाम कहते हैं, और मंद भी हो सकते हैं जो शुक्ल लेशा के परिणाम कहते हैं। जैसे नौवे ग्रहवे को हमें जाने वाले मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो। चौथे पांचवे वाले जीव ग्रैव्यकों में नहीं जा सकते, मुनि होना आवश्यक है। यानी भावलिंगी मुनि जाए या नहीं जाए, द्रव्यलिंगी भी कहां तक ऊपर तक जा सकता है? नवे ग्रैव्यक तक। यानी मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, द्रव्यलिंगी होना आवश्यक है। बाह्य में उतने उसके मंद कषाय होने आवश्यक है। तो ग्रैव्यक में गया है, शुक्ल लेशा के परिणाम सहित गया है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी कषाय है। तो इतना सब करने के बावजूद भी उसको सम्यक तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कुछ मंद कषाय रूप भाव हो रहे हैं, वो मैंने किए, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा वो मानता है। जो मुनि योगी जो आचरण करता है, मैं उस आचरण को करने वाला हूं, वो करते करते मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी उसकी बुद्धि वहां चल रही है। आचरण और जो शुभराग की जो विशिष्ट क्रियाएं हैं, वो तो मुनि जैसी है उसकी, फिर भी राग में भी और शरीर में भी एकत्व रूप परिणाम है, श्रद्धा का दोष चल रहा है, इसलिए उसको सम्यक्त्व नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है, व्रत भी अंगीकार किए है तब भी करता है, फिर भी जिसको तत्व का विचार नहीं है, सात तत्वों का ज्यों का त्यों उसने श्रद्धा नहीं किया है, तब तक उसको सम्यक तो नहीं होता। और कोई अन्य जीव ऐसा है कि उसके अभी व्रत तप कुछ नहीं है, फिर भी तत्व विचार के कारण वो सम्यक्त्व का अधिकारी है, अधिकारी है ने उसको सम्यक्त्व होने का चांस है। तत्व विचार करता है और सही तत्व निर्णय हो जाए तो ही उसे सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम भी ऐसा समझते हैं, हम थोड़े व्रत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। व्रत करने का निषेध नहीं है, जो जिस पोजीशन पर है, व्रत करता हो या न करता हो, उसको तो मुख्यतः तत्व विचार की है। व्रत करने वाले को व्रत छोड़ने के लिए उपदेश नहीं दिया जाता, कर रहा है ना, ठीक बात है, परंतु उसे सम्यक दर्शन काहे से होगा? तो कहते तत्व विचार से ही होगा, फुल स्टॉप। ख्याल में आता है ना, क्योंकि हमने मान्यता में कहीं पढ़ा है कि नहीं नहीं हम व्रत करेंगे तो जरा जल्दी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कल हमने इसको पढ़ा था, क्या करना है कि पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर, देखो पांचों ही भाव है, जीव के पर्याय में चार भाव है और उसका कायम टिकने वाला पारिणामिक भाव है। हमें पारिणामिक भाव ज्ञान तो सबका करना है, स्वभाव भाव का भी ज्ञान करना है, और पर्याय में विकार है उसका ज्ञान तो होगा पहले। ज्ञान तो, क्योंकि ज्ञान किए बिना उसको दूर करने का प्रयत्न कैसे होगा? जैसे कपड़ा मलिन है, तो कपड़ा मलिन है तो कपड़ा भी है और मैल भी है, मैल को जाने के नहीं जानेंगे? मैल को दूर करने के पहले मैल को जानना आवश्यक है कि नहीं? यदि मैल को नहीं जानेंगे तो कपड़ा स्वच्छ करने का और धोने का क्यों हम प्रयत्न करेंगे? तो पहले में पहले हमें ज्ञान हो गया कि मैल मैला है कपड़ा, परंतु फिर उसी समय निर्णय क्या करना है, कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है, एक जगह है अभी संयोग रूप से, परंतु भिन्न किए जा सकते हैं। कपड़े की दृष्टि से मैल होते हुए भी कपड़े की दृष्टि करना है ना उसके, हम उसको ख्याल में लेना है, क्या कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है, मैल कपड़े का स्वरूप नहीं है, कपड़ा कपड़ा रूप है, मैल मैल रूप है, ऐसा जब उसमें हम और भिन्न किया जा सकते हैं, ऐसी श्रद्धा होगी तब आगे का वो कपड़ा धोने का काम हम आगे करेंगे। ऐसे ही यहां पर विकार है अभी हमारे सत्ता में, हमारी पर्याय में विकार हो रहा है, वो हमारे अपने कारण हो रहा है, पहले इसको हम ज्ञान करेंगे, स्वीकार करेंगे, परंतु विकार ये मेरा स्वरूप नहीं है, विकार होते हुए मेरा पारिणामिक भाव तो सदैव शुद्ध ही है, इस पारिणामिक भाव का हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये ख्याल में आते ही विकार दूर हो सकता है, क्योंकि अपना जो पारिणामिक भाव है वैसा स्वभाव भाव पर्याय में प्रकट हो सकता है। इस बात की हमें जो श्रद्धा हो जाए और हम पारिणामिक भाव का आश्रय करेंगे तो जो नई होने वाली पर्याय है वो अविकारी वितराग भाव वाली पर्याय उत्पन्न होगी। इतना पूरा मोक्ष मार्ग है। तो यहां क्या कहते, देखो पारिणामिक भाव, ये जो हम पढ़ रहे हैं 183 पृष्ठ पर एक नंबर के प्रश्न के उत्तर में नीचे से तीसरी लाइन, पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर। ये पारिणामिक भाव का ज्ञान हमें कैसे होगा? ज्ञानियों के उपदेश से, ग्रंथों से। ख्याल है ना, आचार्यों ने तो कितने ग्रंथ लिख के रखे हैं, तो हमें उसमें से बरोबर उसको पहचान कर, आगम के द्वारा उसको जानकर, अपने गुण पर्याय रूप भेदों को। देखो जब हमें ज्ञान करना है तो पारिणामिक भाव का भी ज्ञान करेंगे। मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं, मेरा भी ज्ञान होगा, तो बस अपना ही ज्ञान करना नहीं, अन्य भी द्रव्य है। कौन कौन से है? अन्य भी 5 द्रव्य, यानी टोटल 6 द्रव्य है। यदि हम 6 द्रव्यों को भी स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, बस मैं ही मैं हूं, बाकी कुछ है ही नहीं है, तो ज्ञान झूठा होगा। मैं और पुद्गल 2 ही द्रव्य है, बाकी कुछ है ही नहीं इस विश्व में, तो भी ज्ञान झूठा हो। और ऐसे खोटे ज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है ना, इसलिए हमें सही जानकारी आवश्यक है। तो द्रव्य कैसे होता है? तो गुणों का समूह है, वो द्रव्य है। और द्रव्य किसको कहते? गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो द्रव्य जो है वो तो अनादि अनंत जो उसका पर्याय का समूह है, जो मान लेते हम ये द्रव्य है। अभी यहां तो आदि और एंड दो भी है, परंतु द्रव्य ऐसा नहीं होता, द्रव्य अनादि अनंत होता है। गुण पर्यायों का समूह द्रव्य है, तो द्रव्य में अभी हम द्रव्य को ऐसा देखेंगे। वो पूरा हम अपने द्रव्य की बात करते ना, ये पूरा जो द्रव्य है वो ज्ञान पूरे में है। गुण किसको कहा हमने? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में होता है। तो ये ज्ञान इतना है, दर्शन भी इतना है, सुख भी इतना है, वीर्य भी इतना है, एक एक गुण पूरे में है, बराबर। इतने अनंत गुणों का समूह है, तो क्या इतना ही द्रव्य है? तो नहीं कहते। उसकी अनादि अनंत जो पर्याय है, प्रत्येक गुण की अनादि से लेकर एक 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 समय की जो पर्याय है, वो गुण और पर्यायों का मिलकर अखंड एक द्रव्य है। भगवान ने द्रव्यों को ऐसा ही जाना है। कैसे? अनंत गुण तो इसमें है जो एक साथ विद्यमान होते हैं, परंतु उन गुणों की एक एक समय की जो पर्याय वेरिएबल होती है और उस पर्याय का जो निश्चित क्रम है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना क्रम अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक समय में समय दर्शन हुआ फिर उतने इतने जाके इतने भवों में उसको मोक्ष होगा ही होगा, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना निश्चित क्रम होगा, वो द्रव्य के अपने स्वयं के योग्यता से, स्वयं के जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा उसका क्रम होगा। निमित्त आया इसलिए क्रम बदल गया, ऐसी बात 3 काल में नहीं हो सकती। जीव या कोई भी द्रव्य अपने स्वयं की योग्यता से विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय रूप परिणमता है, तब उसके जो कुछ उसी समय होने वाले जो अनुकूलता का आरोप आ गए उसके हम निमित्त कह देते हैं। तो निमित्त नाम का भी द्रव्य अपने में परिणमता हुआ उस समय में पाया जाता है। निमित्त हमेशा सहज होता है, हमें निमित्त को ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो आकुलता है ना, हमको कैसे, हमको गुरु को ढूंढना है, क्या करेंगे तो हमारा भी, अभी हमको आगे विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये बात ऐसी नहीं है। जिसको तीव्र जिज्ञासा होती है, तत्व की रुचि होती है, उसको तत्व समझाने वाला न मिले ऐसा हो नहीं सकता। सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन की पात्रता अभी आई थी नजदीक, तो चारण रिद्धि मुनिराज स्वयं सहज विहार करते हुए वो वहां उतर गए। और वो तिरियंच और ये मुनिराज, वो अकेला एक श्रोता और ये दो, कैसे उनके उनके तो मुख मुद्रा देखकर ही उसको कुछ ऐसे भाव हो गए ना, जो कुछ उसको उपदेश दिया होगा, वो उसकी क्या भाषा थी, क्या शब्द थे, क्यों बेन, उसकी बात नहीं हमको लेनी, परंतु उसको वहां पात्रता हुई, उसकी पक गई हम कहते हैं, उसकी पर्याय की योग्यता हुई है और सामने निमित्त सहज स्वयं आ जाता है। द्रव्य को जो हम गुण पर्यायों का समुदाय कहते हैं, तो द्रव्य की एक 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 समय की पर्याय निश्चित है, जीव की ही नहीं पुद्गल की भी, धर्म धर्म आकाश काल, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र तो है ही है परंतु निश्चित है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि केवल ज्ञानी तीन काल की पर्याय जानते हैं, यदि ये पर्याय निश्चित नहीं होती तो वे कैसे जानते, ख्याल है ना? तो उन्होंने जाना, इसलिए हमारा पुरुषार्थ भी खोटा पड़ गया। हम पुरुषार्थ कैसा करें? प्रश्न तो सबका यही है ना, क्योंकि हमने पुरुषार्थ की परिभाषा ही समझी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय सुनिश्चित है, वो द्रव्य के अपने स्वयं की योग्यता से होती है, और ज्ञान में इतनी योग्यता है कि ज्ञान उसको पहले ही जान लेता है। कल सुबह सूरज इतने बजकर इतने मिनट में उग जाएगा, ये हमने जान लिया पहले। हमने ये भी जाना है कि ग्रहण इस दिन ग्रहण लगने वाला है, तो सूर्य पराधीन हुआ ना, क्यों बिन सूरज चांद पराधीन हो गए, क्योंकि हमने उनके जो कुछ भ्रमण है उसको पहले ही जान लिया है। आज हमने कौन सा वार है, कौन सी तारीख जानी और कल कौन सी, वो भी जान ली, तो क्या वो पराधीन हो गया? ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञानी के ज्ञान की ये विशेषता है कि आगे होने वाली और पूर्व में हो चुकी है अनंत द्रव्यों की, अनंत पर्यायों को, और एक एक पर्याय के सभी अविभाग प्रतिच्छेदों को एक समय में जाने, ऐसी वो केवल ज्ञान की विशेषता है। और ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप मैं स्वयं हूं, क्योंकि केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। केवल ज्ञान हर समय प्रकट हो, ऐसी अनंत शक्ति मुझ में पड़ी है, और यहीं से वो प्रकट होने वाला है। किसके? जो उस शक्ति को स्वीकार करे उसके। उस शक्ति को हम स्वीकार नहीं करते तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं किया ना। हम बाहर की चकाचौंध, बाहर की अधिकता क्यों भासित होती है? क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है, ऐसा लगता है। जब अपनी विशेषता लगी, अधिक जाने आत्मने, अधिक यानी भिन्न तो है ही है, परंतु सबसे महान मैं स्वयं पदार्थ हूं, क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने की, अकेले केवल ज्ञान की बात नहीं है, अनंत गुणों का अनंत विकास हो, ऐसी अनंत गुण स्वरूप विभूति मेरे पास है, उसमें से ही वो अनंत गुणों का जो पूर्ण अमर्यादित ऐसा विकास होने वाला है पर्याय में, वो शक्ति मेरे में पड़ी है, ऐसा जब हम स्वीकार करते हैं और उस पर एकाग्र, उसको मैं स्वयं स्वरूप से स्वीकार करना है। अभी हमने स्वरूप से किसमें स्थापित किया है? विकारी भावों में, शुभ भावों में कहो, क्योंकि अशुभ भाव में मैं हूं ऐसा कोई नहीं मानता, मैंने किया तो ये कार्य हुआ। शुभ भाव में इसके बहुत अपनत्व है, मेरापना है, शरीर में अपनत्व चल रहा है। तो ये जो हमारी भूल हो रही है ना, सातों तत्वों संबंधी जो कुछ भूल चल रही है, उसके कारण पारिणामिक भाव होते हुए भी इसको अभी तक औपशमिक भाव नहीं प्रकट हुआ। तो कहते हैं देखो कि पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर अपने गुण पर्याय रूप भेदों को, पहले भेदों को जानना है, हो जैसा है वैसा जानना है, नहीं तो कोई मैं पर्याय है ही नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा बस अनादि अनंत हूं, जैसे किसी अन्य मतों की बात, वो ऐसा ही उनके मनन के क्लास बीच बीच चलते रहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा शुद्ध बुद्ध त्रिकाली। जो हम पारिणामिक भाव की बात करते हैं वो सर्वथा मानते हैं। सर्वथा का अर्थ क्या है? पर्याय को मानते ही नहीं, पर्याय में जो विकार है उसका स्वीकार ही नहीं है, बस आत्मा ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, ऐसा ही कहते हैं। हमें ऐसा लगता है देखो सभी मत, सभी जो धर्म है वो एक सी बातें करती है, वो भी आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहते हैं, त्रिकाली कहते हैं, और हमारे समय सार में भी ये बात बताइए। समय सार में जो है वो अपेक्षित कथन है, जो मैं त्रिकाली जिसका आश्रय करना है दृष्टि की अपेक्षा उसको कहा है, परंतु ज्ञान उसी समय ये जानता है कि पर्याय में अशुद्धता है, विकार है। यदि उसको अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो मैं शुद्ध हूं बुद्ध, यानी यहां मिथ्या ज्ञान चल रहा है और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए। कैसा हमें सम्यक दर्शन चाहिए? मिथ्या ज्ञान वाला सम्यक दर्शन चाहिए। ऐसे हो सकता है सरलाबेन? ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों सम्यक हो गए ना, तो इसलिए पर्याय का ज्ञान आवश्यक है। गुणभेद और पर्यायों का ज्ञान पहले आवश्यक है, जानने के बाद उसको गौण करना है, क्योंकि हमें लक्ष्य त्रिकाली का करना है। पहले हमने गुण पर्यायों को सबको जान लिया, भेदों को जान लिया, कल हमने उदाहरण देखा था भारत का, तो भेदों को गुणों को अन्य भिन्न भिन्न जाना तो हमें ख्याल में आया आत्मा कैसा है। अब इन भेदों को गौण करना है, वो कहीं चले नहीं जाएगी द्रव्य में से, क्योंकि द्रव्य में से उसके गुण कभी अलग हो ही नहीं सकते, नित्य तादात्म्य संबंध है। और जो कोई पर्याय है वो उस समय के लिए तादात्म्य रूप है, एक समय के लिए तादात्म्य एक रूप है, क्योंकि वो द्रव्य की ही अवस्था है जिसको हम अनित्य तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो पहले तो जानेंगे, बाद में गुण पर्याय रूप भेदों को और परवस्तुओं को गौण करके, क्योंकि परवस्तु में हम इंद्रिय ज्ञान के द्वारा परवस्तुओं को ही जानते हैं, तो परवस्तुओं को गौण करना यानी इंद्रियों में जो हमारा उपयोग बाहर भटक रहा है उसको वहां हम अपने आप पर केंद्रित करेंगे। जानने वाले हम स्वयं हैं, परंतु हमने जानने वाले को नहीं जाना और अन्य अन्य चीजों को जानते, क्योंकि हमें उसमें बहुत रस है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा हम परवस्तुओं को ही जानते रहे। तो उनको गौण करके आचार्य देव उन पर से लक्ष्य छुड़वाते हैं। किस पर से? भेदों का और परवस्तुओं का लक्ष्य छुड़वाते हैं। भेद भी वस्तु में है और परवस्तु भी है, जहां पर है वहां पर, हमारे घर भी है, बाल बच्चे भी है, सब है, परंतु लक्ष्य छोड़ा हमने। जीव पहले में पहले क्या करना चाहता है? उनको ही हटाना चाहता है या स्वयं उससे हटकर भाग जाना चाहता है। ख्याल में आता है ना क्या इसकी भूल हो रही है? परंतु उसका लक्ष्य छोड़ना है। अब क्या कहते हैं, ऐसा क्यों लक्ष्य छोड़ना है? लक्ष्य किसका छोड़ना है? भेद का, यानी गुणों के भेद का लक्ष्य छोड़ना है, पर्यायों के भेदों का लक्ष्य छोड़ना है। तो गुणों के और पर्यायों के भेद का लक्ष्य छोड़ने पर द्रव्य हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कहेंगे गुणों को भी आपने निकलवाया और पर्यायों को भी निकलवाया, ऐसा हुआ क्या? गुण भी है, पर्याय भी है, ये अखंड द्रव्य है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा का पूरा है उसमें। पर्यायों के भेद छुड़ाए हैं, एक एक समय की पर्यायों पर नजर करते थे, क्योंकि भेद को क्यों लक्ष्य छोड़ना है? क्योंकि जहां भेद होता है उसको कहते हैं विकल्प है, राग है। कहते हैं भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। विकल्प कहो या भेद कहो एक ही बात है। विकल्प शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमें यहां से अभी जाना है आगे के, कौन सा हमको जाना है? राले में जाना है। तो जाने के लिए क्या क्या विकल्प है, यानी कौन कौन से ऑप्शन है? तो आप कहेंगे कि आप हवाई जहाज से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, कार लेके भी जा सकते हो, तो तीन ऑप्शन बताए, उसको भी विकल्प कहते हैं। भेद को भी विकल्प कहते हैं कि ये कर्म हम एक कहते हैं तो उसमें कितने विकल्प है, तो उसके आठ भेद हैं, तो भी हम उसको विकल्प कहेंगे। तो ये विकल्प शब्द का दूसरा अर्थ होता है। राग को भी विकल्प कहते हैं। भेद करके जानने को भी हम कहते हैं ज्ञान। क्या करता है? भेद कर करके जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। और दर्शन क्या है? ज्ञाता दृष्टा वाला जो दर्शन है उसको कहते हैं निर्विकल्प है। निर्विकल्प है ना, सामान्य से जानता है, भेद किए बिना जानता है। तो ज्ञान को तो सविकल्प कहेंगे और दर्शन को निर्विकल्प कहेंगे। तो अतुल भाई, केवल ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? अभी अभी आए हो। हाँ, निर्विकल्प है। पीछे निर्विकल्प। रजनी भाई,
रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक।
बहुत अच्छा। हाँ,
उसमें क्या बने? केवल ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है।
बिल्कुल। हाँ,
तो हिसाब से केवल ज्ञान विकल्पात्मक।
बहुत अच्छा। देखो देखो, ऐसे ही हमें जहां जो अपेक्षा है ना उसको समझना चाहिए। ज्ञान को ही विकल्पात्मक कहते हैं। क्यों? विकल्प ने भेद से जानता है। केवल ज्ञानी एक एक पर्याय को जानते हैं ना, और एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों को जानते हैं। केवल ज्ञानी अनंत द्रव्यों को जानते हैं, तो सबको मिलकर एक जानते हैं, और फिर भिन्न भिन्न भी जानते हैं कि नहीं जानते? ये जीव है, ये पुद्गल है, ये सरलाबेन का जीव है और ये रंजनबेन का जीव है, इसकी ये तीनों काल की पर्याय, भिन्न भिन्न जान रहे कि नहीं जान रहे? तो भेद करके जानने को विकल्पात्मक कहते हैं। तो हम कहेंगे केवल ज्ञान को भी सविकल्प कहेंगे। घबराना नहीं। क्योंकि हमने वो निर्विकल्प निर्विकल्प समझा ना, निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, विकल्प है, वो विचार कर रहे हैं या उसको राग कर रहे हैं, ऐसा हमको अर्थ होता है। वो विकल्प का एक अर्थ राग भी होता है, उस राग की बात नहीं है। जब हम कहते हैं निर्विकल्प आत्मा को अनुभव करो, तो उसमें दो ही अपेक्षा लगती है, निर्विकल्प ने अभेद आत्मा का अनुभव करो और निर्विकल्प होकर यानी राग रहित होकर अनुभव करो। तो जो जहां अर्थ है उसको हमें बहुत ग्रहण करना चाहिए अच्छी तरह से। अब यहां भेद के अर्थ में क्या कहते हैं, भेद दृष्टि में, नीचे से दूसरी लाइन पहले प्रश्न के उत्तर में, भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। निर्विकल्प दशा यानी वो अभेद दशा कहो या राग रहित दशा, दोनों ही कहेंगे। भेद दृष्टि में, क्योंकि जहां भेद पर दृष्टि है, भेद का जहां लक्ष्य है, वहां राग की उत्पत्ति होती ही है। भेद को जानकर फिर भेद को गौण करके अभेद ऐसे आत्मा की दृष्टि करना है, उसका लक्ष्य करना है, उसमें स्वस्थापित करना है। आप कहेंगे उसका लक्ष्य छुड़ाना ही था, तो उसका लक्ष्य क्यों कराते हैं पहले, समझ में है ना। आप स्कूल में एडमिशन लेते, हम इंडिया की बात करेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ली और फिर दसवीं स्टैंडर्ड में वो स्कूल से निकलकर कॉलेज में गए हम, हाँ, तो उसको हमने स्कूल छोड़ा ना, आपने छोड़ा था कि नहीं, हाँ, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये छोड़ना ही था, तो स्कूल में एडमिशन क्यों ली। यदि कॉलेज में पढ़ना है आगे जाके, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जाना है ना, तो छोड़ना ही था, जाना ही क्यों, डायरेक्ट जाते हैं ना कॉलेज में, हाँ हाँ। वैसे या हमको नदी पार करनी है तो नाव में बैठना है क्या उतरना है, बोलो अरुणा बेन,
दोनों करना है।
हाँ कहाँ उतरना, बीच में मझधार में हाँ, तो नाव में बैठना भी है, पूरे नदी के पार करने के बाद उतरना है, तो उतरना है तो फिर बैठे क्यों, तो बैठे बिना हम पार नहीं हो सकते, और बीच में उतरे तो भी डूब जाएंगे, तो पार होने के बाद उस पार हो जाए हम रीच वहां पर हम पहुंच जाएंगे, तो उतरना भी है। ये ऐसी भाषा हम यहां घोटाला करते हैं। जब पुण्य का भी कहते हैं निषेध, तो अभी तो पुण्य हो रहा है, तो पुण्य करते करते हम पहुंच जाएंगे ना, तो पुण्य को छोड़ना कि नहीं छोड़ना, तो बीच में ही छोड़ेंगे ना, जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है और बीच में छोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पाप में चले जाए, डूबेंगे नरक निर्बोध में चले जाएंगे। परंतु अभिप्राय में क्या है, ये छोड़कर मुझे आगे जाना है। जब आत्मानुभूति होती है, देखो जब भेद दृष्टि में, जब तक भेद का विचार चल रहा है क्या, ये जो द्रव्य है गुण पर्यवय द्रव्य है, ये सात तत्व है, ऐसे जो हम सारे विचार कर रहे हैं, उस समय पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है, हाँ भाई, वो शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है, आप बोलो, शुभ भाव है। आत्मा के बारे में विचार चल रहा है, आत्मा को जान नहीं रहे हैं, समझ में है डिफरेंस, शब्द को लेकर हम आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, भेदों को हम ख्याल में ले रहे, वो अत्युच्च सबसे उच्च प्रकार का शुभ भाव है। अन्य जितने भी शुभ भाव हमें मालूम है उससे भी सबसे ऊंचा प्रकार का शुभ भाव चल रहा है, जो हम कहते हैं शुभ भाव त्यागने योग्य है। ऐसा कहना शुभ भाव है क्या, क्या है ऐसा कहना ही नहीं, ऐसे हमारी जो कुछ चल रही है चर्चा, वो शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है क्या, जो कहता है शुभ भाव त्याज्य है वो स्वयं शुभ भाव कर रहा है, बराबर है। शुद्ध भाव कब कहेंगे, वो एक्चुअली त्याग कर शुद्ध में जाएगा तो कहेंगे उसने शुभ को छोड़ा और शुद्ध को अंगीकार किया। तो ये भेद दृष्टि जब तक है, उसकी जब गुण पर्यायों की चर्चा है या द्रव्य का सर्वांगीण स्वरूप हम जान रहे हैं, तब तक तो वो शुभ भाव है। और वो जानना भी क्यों जरूरी है, हमने अभी देखा विस्तार से। जब तक उसमें हमारे कुछ ज्ञान में खोट होगी, द्रव्य के स्वरूप के संबंध में हम जो कुछ हमारी खोटी जानकारी होगी, तो हमारा अभी ज्ञान सही नहीं है। ज्ञान सम्यक होने के पहले, श्रद्धा सम्यक होने के पहले, ज्ञान पहले सही हो जाता है। सम्यक होता है नहीं कहा, क्योंकि उसको सम्यक शब्द कब कहेंगे, जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र एक साथ होता है तब, जिस समय आत्मानुभूति होगी उस समय उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में आएगा। पहले ज्ञान सही है, क्यों? जैसा आगम में बताया है वैसा हम आगम के द्वारा या ज्ञानी के उपदेश के द्वारा जान रहे हैं, तो वो ज्ञान सही ज्ञान है। वो सही ज्ञान में हम भेदों को अच्छी तरह से जाना। अब क्या करना है, भेद दृष्टि जब तक है तब तक निर्विकल्प दशा नहीं होती है, ये राग की दशा चल रही है, शुभ भाव चल रहे हैं, इसलिए कहते हैं भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, इसलिए अभेद दृष्टि कराई है कि जिससे निर्विकल्प दशा प्रकट हो। अभेद की दृष्टि अपना अभेद स्वरूप ख्याल में लेना है तो निर्विकल्प दशा स्वयं सहज उत्पन्न होती है। लोगों का यही बहुत सिंसियर क्वेश्चन है, सिंसियरली वो पूछते हैं कि ये कैसे पाना निर्विकल्प दशा, विकल्प से निर्विकल्प कैसे होना। तो ये जो हम भेद की दृष्टि में जो विचारों की दशा है तो वो स्वयं वह छूट जाती है और निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है, परंतु उसके पहले अभिप्राय में ये लेना है कि जब तक भेद संबंधी विचार चल रहे हैं तो ये निर्विकल्प दशा नहीं है। विकल्प करने से निर्विकल्प दशा नहीं होगी। विकल्प का प्रयोजन या उसका इम्पोर्टेंस क्या था, आत्मा कैसा है ये समझना था। आत्मा कैसा है समझा, उसका पारिणामिक भाव क्या है समझा, उसके पर्याय रूप भाव क्या है उसको समझ में लिया, बहुत अच्छी तरह से समझा। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। विकल्प भी हम जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि हमने आत्मा को जानना था वो कार्य हो गया है। अभी हम ज्ञायक भाव को ही जानने में स्थिर हो जाते हैं तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वयमेव होती है। वो कैसे करना उसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता और ना ही कोई ध्यान के क्लासेस होते हैं, क्योंकि कोई विशिष्ट वाक्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपूर्व ऐसी अपनी महिमा आती है और अपूर्व महिमा आए बिना उपयोग अपने आप पर नहीं केंद्रित होता। ख्याल आता है? तो कहते हैं निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। औपशमिक भाव भी एक प्रकार की निर्विकल्प दशा है। यह औपशमिक भाव क्या होता है हमने कल चर्चा बहुत विस्तार से की थी। दूसरा प्रश्न, इस सूत्र में
ये निर्विकल्प दशा की या निर्विकल्प दशा तो समित्व के लिए, समित्व के डायरेक्शन के लिए है, तो मगर जो और मतलब सच्चे ज्ञान के बदल है तो निर्विकल्प अज्ञान भी होता है ना, अज्ञान के बारे में भी निर्विकल्प, अज्ञानी दूसरे लौकिक व्यवहार की चीजों में भी निर्विकल्प होता है, तो वह उसके एग्जाम्पल से हम ये सिर्फ समझने के लिए
निर्विकल्प। आप एग्जाम्पल दे तो मैं भी समझू जरा अज्ञानी का निर्विकल्पना। हाँ
देखिए कि हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले बहुत सब ख्याल में रखना पड़ता है, हाँ भाई ब्रेक लगाना चाहिए, एक्सीलेटर लगाना चाहिए। तो फिर जब ड्राइविंग करते थोड़े महीने बाद फिर वो ड्राइविंग हमारा सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें हम इतना विकल्प हमको नहीं।
हाँ, उस विकल्प की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसको निर्विकल्प नहीं कहा जाता, वो तो अभ्यास से प्राप्त हुई, वो प्रैक्टिस है। यानी हम वो तो अन्य भी विचार करते करते वो हो जाता है, वो क्रिया से हम यूज टू हो जाते हैं। उस समय निर्विकल्प नहीं हुए है, उस समय उस संबंधी विचार नहीं है, परंतु उस समय कोई अन्य विचार चल रहे हैं ना हमारे।
निर्विकल्प की बात
हाँ, यानी वो हम अभ्यास से हो जाते हैं कि उस संबंध में, जैसे कोई निटिंग भी करते हैं ना, अभी ड्राइविंग की बात की, तो हम स्कूल में पहले वो तो एक टाका ऐसे लेना वो बुनते हैं ना, उलन कुछ गारमेंट्स बनाते हैं, तो फिर वो तो बाकी जब आदत हो जाती है तो इधर कुछ चर्चे करो और इधर इधर वो चलते रहता है। अभी कंप्यूटर है, हमको ईमेल करना है तो हम एक एक लेटर ऐसा ढूंढ ढूंढ कर उसको दबाते हैं और आप इधर इधर कुछ करो और ये चलता रहता है, हम ये क्या कर रहे हैं कैसे हो रहे हैं। हाँ
दूसरा क्या होता है, जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं और मानते हैं इनको बहुत आनंद होता है और उसको विचार नहीं रहता है कभी।
देखो ड्रग्स लेने वाले मानते हैं कि हम निर्विकल्प निर्विचार हो गए। जैसे वो बहुत पहले वो मराठी में एक ड्रामा आया था, कौन सा, तुझे है तुझे पासी, तो उसमें ऐसा ही था, आत्मा अमर है, क्या करता है वो भांग की गोली लेता है और बस ऐसा, यानी वो अन्य लोग भी ऐसे समझते कि आपने अध्यात्म की नशा कर ली है। जिसको आत्मा की बात नहीं रुचती है ना, वो हम लोगों को भी ऐसा कहने वाले हैं, अध्यात्म की गोली खा ली आपने, भांग ऑर्डर नशा चढ़ गया आपको। नहीं, आप पूछा था, पूछ रहे थे।
हाँ, तो फिर तत्वों का स्टडी करके, तत्वों का विचार करके, उसमें ही जाते जाते।
हाँ, आपका ऐसा ही कहना है। जब हमको तत्व की दृष्टि आती है, तत्व के आधार से विचार करने को हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे रोटी बेलते बेलते ये सब, वो तो स्वद्रव्य उसका उसमें है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा मेरे में है, ऐसे बहुत रट रट के पहले सोचना पड़ता है। बाद में हमें एक बार तत्व की दृष्टि हो जाती है, सच्चा अभ्यास हो जाता है, तो प्रत्येक होते हुए कार्य में अपनी भिन्नता भासित होने लगती है। ये तो एक्चुअल भासित होना समय दृष्टि को होगा, परंतु फिर भी ये इसीलिए अभ्यास कहते हैं इसको, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। तो पूजा में भी आता है ना, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। ये मोह रूपी हो तो मिथ्या तो भी गलने लगता है, वो भी उसकी तीव्रता कम होती है, मंदता की ओर बढ़ता है। तो ये ज्ञानाभ्यास सतत 24 घंटे चलेगा मन में। एक बार हमें ये हाथ में आ गया एक फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हम सब जगह लगाते हैं कि नहीं। बच्चा भी अपने घर में, छोटा कोई बच्चा तो एकाध कोई शब्द सीख लेता है, और बार बार एवरीवेयर वो वही लगाता रहता है, वो भले उसमें उसको अर्थ वहां हो या नहीं हो। देखो, आपको अचरज लगेगा, हमने पुणे में बहुत सारे शिविर किए थे ना। जैसे हम यहाँ 10 दिन मिले हैं और दिन में यहाँ कुछ 7.5-8 घंटे बोलते हैं, ज्यादा भी हो जाता है, वैसे वहां भी हम 8-8.5 घंटे दोनों मिलकर बोलते थे। और आपको अचरज लगेगा, वहां के 6-7 साल के बच्चे भी 8-8 घंटे सामने बैठते। गुणस्थान में कौन से गुणस्थान से कहां जाता है, ये सभी बच्चे पहला ही आंसर देते थे फटाक। 8 साल का बच्चा भी वो फटाफट बोलता था कि कहां से जीव कहां जाता है, कहां आता है, ग्रास्पिंग होती है ना उनको। तो जब ये हमारी चर्चा चलती थी कि 2-3 महीने के बाद हमने एक एक शिविर लिए थे, बच्चे भी सुनते थे, तो फिर वो निमित्त से कुछ नहीं होता है, उनके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी सिखाते थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, अरे कोई गिर भी जाए तो ये तो शरीर में चोट आई, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे दौड़ते थे। और फिर दवाई खाने के लिए भी मना करते थे कि निमित्त से कुछ नहीं होता, मैं दवाई नहीं खाऊं, तो माताएं सब परेशान हो गई सचमुच फोन आते रहे। और फिर दूसरी बार गए तो ये आपने सिखाया तो हमें तो मुसीबत खड़ी कर दी आपने, हम तो बहुत परेशान है, ये ऐसा कैसा आपका तत्व ज्ञान। मैंने बोला आपके बच्चे चलना तो सीखे थे ना बचपन में, कोई 6 महीने में थोड़ा खड़े होने का प्रयत्न करते हो, 8 महीने में, 10 महीने में बालक चलने लगता है, साल भर में तो स्टेप बाय स्टेप चलता है आगे। तो क्या करते हम, लड़खड़ाता है तो क्या करते, उसको चलने नहीं देते ना, कंधे पर ही उठा के घूमते, क्या करते, वो भले चले फिर गिर जाए, फिर भी हम तो उसको पुशअप करते, तो उसको तो हम जिसको कहते हैं ना कि सराहना करते हैं उसकी कि अच्छा है, चलो 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 आओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है तो हम उसको ताली बजाकर उसको स्वागत करते हैं उसका। तो यहां जो अगर कोई ये निमित्त की भाषा है या तत्वज्ञान की भाषा बोलने भी लगते बच्चे तो अच्छा है ना, एटलीस्ट दे आर थिंकिंग ऑन दैट लाइन, भले उसमें गलती हो या नहीं हो, जो कुछ है वो तो कालांतर से हो जाता है उसमें सब सुधार। परंतु अगर हम तत्व ज्ञान के लिए हमें ऐसी परेशानी होती है, अब हम क्या करें ऐसे कहेंगे, तो ये बात सही नहीं है। अभी वो जो उस जमाने के बच्चे भी आजकल डॉक्टर और इंजीनियर्स हो गए, फिर भी इतने तत्व के पक्के हैं, क्योंकि बचपन में ये जो बीज बोया है ना, तो अभी वो तो बिल्कुल कहीं हटने वाला नहीं है। चलो, हाँ, एक क्षण यानी अंतर्मुहूर्त तक होती है, विकल्पात्मक होती है आगे पीछे की दशा। समय दर्शन होने के पूर्व में विकल्प दशा है, उसमें से छूटकर वो निर्विकल्प हुआ है, और फिर दोबारा निर्विकल्प दशा में आ जाता है। हाँ, आपका कुछ प्रश्न है प्रवीण भाई? हाँ,
जैसे सर्वज्ञ का सब कुछ जानना भेद रूप उसको कैसे, सर्वज्ञ तो निर्विकल्प है लेकिन वो जानता है तो भेद रूप सबको एक एक पर्याय को सब द्रव्य को तो उसको कैसे समझा।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप कहते हैं सर्वज्ञ तो पूर्ण वितरागी है और वो सभी द्रव्यों के सभी गुण पर्यायों को भेद रूप जानते हैं, एक एक करके भिन्न भिन्न जानते हैं, तो उसको तो हम सविकल्प कहते हैं, तो ऐसे कैसे? और हम जब विकल्पों का विचार करते हैं, दूसरों को पर को जानते हैं, तो हमें तो राग द्वेष होता है, तो उन्होंने जाना वो चले और हमने जाना तो राग द्वेष हो, क्योंकि अभी देखो जानने ज्ञान की पर्याय के साथ साथ चारित्र गुण का भी यहाँ पर्याय परिणमन चल रहा है ना। अभी मिथ्या दृष्टि के तो चार कषाय चौकड़ी की बात चल रही, उसके चार कषाय चौकड़ी में उदय होता या क्रोध का, मान का, माया का या लोक का। क्रोध का उदय होते अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, चारों क्रोधों का एक साथ उदय चलता है, यह मान माया लोक जो यथायोग्य समझना। मिथ्या दृष्टि के इतने चार कषाय चौकड़ी का राग विद्यमान है, उसका जो जानना चल रहा है उसके साथ साथ चारों के राग भाव उसके विद्यमान है, वह जो जान रहा है वो राग सहित ही जान रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूं, हाँ भाई मैं तो सबको जानता हूं। हमें लगता है ना कि ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, सबको जानता रहो। क्या जानना? जो कुछ हो रहा है सुबह से जानता हूं, टीवी पर क्या चल रहा है वो जानता हूं, सामने खाना आया तो क्या खाना है वो जानता हूं, फिर जो कुछ सामने चल रहा है वो बातें सब जान रहे हो, पैसा आ रहा है, हम शेयर्स लिए है उसके भाव जानता हूं, फिर उसमें क्या ये सब ये जानना देखना नहीं कहलाता। क्योंकि जब पर को जान रहा है तो मिथ्यात्व दशा में उसके वो राग सहित ही चारों कषाय उसके विद्यमान है, तो उसका जानना राग सहित जान रहा है। अब हम बीच वाले भूमिकाएं टालकर केवल ज्ञानी की बात करेंगे। केवल ज्ञानी सबको जान रहा है, आप हमको सबको जानने का निषेध करते हैं और उनको जाने तो चले, एक एक समय के पर्याय तक को जानते हैं। हाँ क्यों? उनके ज्ञान का जैसे केवल ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, चारित्र की दशा क्या है? पूर्ण वीतराग है, वीतरागता के साथ सबको जान रहा है, तो जानने से राग नहीं होता है, जानने मात्र से राग नहीं होता है। तो चौथे वाले के लिए या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले पर को जानने का निषेध क्यों करते हैं? या सम्यक दृष्टि भी हो जाएगी तो ये विषयों में क्यों नहीं रमना? विषयों को जानने से क्या उसमें क्या नुकसान क्या है उसका, समझ में आता है? तो वहां राग होता है, राग सहित जानना है पर को, इसलिए पर को नहीं, पर को गौण किया ना यहां पर वस्तुओं को गौण करके। ये तो औक्षणिक भाव प्रकट होता है, उसके पहले जीव मिथ्या तो दशा में है, उसकी अपेक्षा से यहां वर्णन है। आपको कदाचित पता नहीं होगा, जब निराज श्रेणी चढ़ते हैं, आठवें नौवें दसवें गुणस्थान के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तब उनके ज्ञान का विषय तो पुद्गल परमाणु भी हो सकता है। हाँ वहां, क्योंकि वो जो जान रहे हैं वो वीतरागता के साथ जान रहे हैं, इसलिए वहां पर को जानने मात्र से राग नहीं होता है, परंतु हमें राग अपनी भूमिका के अनुसार उस गुणस्थान में उतना राग होता है, इसलिए हम कमजोर है ना, नीचे के जो अभी अभी बीमारी में से उठा है उसको क्या कहते, बाहर नहीं जाना, इन्फेक्शन होगा, क्यों? अभी कमजोरी है, ऐसी अवस्था में इन्फेक्शन पकड़ने का चांस ज्यादा है क्योंकि हम कमजोर है। ऐसे ही जब हमारी कमजोर अवस्था है, कौन सी? ये तो पूर्ण जो आप अभी यहां तो मिथ्या चारित्री की बात है, पूर्ण रागी जो है उसको तो कहे अभी रुक जा, अपने आप को जानो, पर को मत जानो। जहां जो उपदेश है उसके पीछे का हमें बराबर ख्याल करना है। और निर्विकल्प होना उसका अर्थ क्या है? राग रहित तो वे है, परंतु केवल ज्ञान को सविकल्प क्यों कहा? क्योंकि वो भेद सहित जानते हैं। ज्ञान का नाम ही सविकल्प जानना है। हाँ दर्शन का बताया ना, दर्शन को हम निर्विकल्प कहेंगे, निराकार। वो बात आगे इस आकार निराकार के में इसकी चर्चा इसमें आगे आने वाली है।
आपने कषाय के साथ जानने की बात की, मिथ्या दृष्टि को साथ साथ में दर्शन मोक्ष माने मेरापना भी साथ में होता है।
हाँ बिल्कुल है, देखिए एक साथ अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है ना। अभी हमने जानने की बात की, राग सहित जानने की, तो मिथ्या दृष्टि जीव जान रहा है, उसमें मिथ्यात्व है, तो उसकी खोटी श्रद्धा है, वो पर को मैं मानकर जान रहा है, मेरा मानकर वो जानने का कार्य चल रहा है, और उसी समय में मिथ्यात्व के कारण तीव्र राग द्वेष भी हो रहे हैं। मिथ्यात्व है इसलिए अनंतानुबंधी वहां चल रहा है, यानी वो सारे तीनों, अभी हम तीन गुण की बात यहां कर रहे हैं ना, तो उसका जानना ये प्योर जानना नहीं रहा, इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में जो कहते हैं, हम तो सबको जानते देखते रहते, सुबह से शाम तक सबको जानते, तो हमको समय दर्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके पर को जानने में ये सभी राग द्वेष और मिथ्यात्व चल रहे हैं। तो अभी पहले में पहले सबका हम जीव के स्वरूप को जानेंगे और फिर वो अपना अपनी दृष्टि करेगा, क्योंकि अपनी महिमा करेगा तो स्व का लक्ष्य करेगा, तो ये मंद होते होते ऐसी भी स्टेज आएगी कि उसको निर्विकल्प दशा ने अभेद आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तब उसके मिथ्या तो नहीं रहेगा, फिर भी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग रहेगे वहां पर भी, जब अपने में लीन है तो उस राग का उसको लक्ष्य नहीं है, फिर भी वहां राग है क्योंकि उतना बंध भी है, शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में आता है या अशुभोपयोग में भी चला जाता है, तो भी अभी तीन कषाय का ही उसको राग है, अभी ना मिथ्यात्व है और ना ही अनंतानुबंधी है, यानी कोई शुद्धोपयोग में बिल्कुल पूर्ण वितराग है मान लेते तो वो भी सच नहीं है। हाँ,
ये जो राग होता है साथ साथ विज्ञान के साथ में, उनको अभूतपूर्वक राग बोला जाता है कि वो उसके बाद अलग है।
देखो आपका प्रश्न ऐसे है, ज्ञान के साथ जो राग होता है वह अबुद्धिपूर्वक राग है कि नहीं है? देखो जब हम जो राग हमारे स्वयं के ख्याल में आता है, जैसे क्रोध होते हुए हमें समझ में आता है कि नहीं, मुझे अभी क्रोध हो रहा है, आप कहते ना अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बाजो अपना मित्र भी हो तो क्या कहते, तुम अभी हट जाओ मुझे बहुत गुस्सा है, फिर मैं कुछ गलत बोल दूं तो अभी मुझे डोंट ब्लेम मी होता है ना ऐसा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें क्रोध आ रहा है, इसको कहेंगे बुद्धिपूर्वक राग। अब जब ये अभेद आत्मा की यानी जो पारिणामिक भाव का लक्ष्य किया है, गुण पर्यायों को गौण किया है, परद्रव्यों को गौण किया है, तो वहां अभी अनंतानुबंधी मान लेते हैं उदय में नहीं है, तो तीन कषाय का उदय चल रहा है कि नहीं? वो जो वहां शुभ अशुभ राग हो रहे हैं वो उसके ख्याल में नहीं आ रहे, तो उसको कहेंगे अबुद्धिपूर्वक का राग। एक बात ये, अभी हम जो बुद्धिपूर्वक जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं या शुभ अशुभ भाव होते हैं, उस समय भी अबुद्धिपूर्वक भी वहां परिणाम होते रहते हैं जो हमारे अपने पकड़ में नहीं आते, क्योंकि हम तो जाते ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे बाबा, हमारे कोई विकल्प नहीं थे, कोई हमारे राग द्वेष के परिणाम नहीं थे, हम तो बस ऐसे बैठे थे वहां, परंतु उस समय भी जिसको हम कहेंगे सब कॉन्शियसली कुछ न कुछ चलता है, तो यह अबुद्धिपूर्वक राग चलते हैं। दूसरा, कहीं कहीं शास्त्र में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का ऐसा भी अर्थ कहते हैं कहीं कहीं, हो क्या कि बुद्धिपूर्वक यानी जानी जो है, यानी सोच समझ कर हम कहते कि हमें, हाँ हाँ,
अभिप्राय पूर्वक,
अभिप्राय ने आपको स्वाध्याय करना चाहिए तो हाँ अभी मैं स्वाध्याय का समय हो गया ना, चलो मुझे अभी स्वाध्याय करना, यानी हमने सोच समझ कर बुद्धिपूर्वक किया, ये जिसको कहते हैं। और अबुद्धिपूर्वक कहने क्या, अरे हमको तो कोई नहीं करना था मगर ये हो गया, या बैठे है स्वाध्याय में कोई दूसरा ही बीच में विचार आ गया, ये हमने सोचा नहीं था, नहीं करना चाहते थे, परंतु वो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की मेजोरिटीली उसकी चर्चा नहीं होती।
इसमें जो है ना प्रश्नोत्तर
गुणस्थान विवेचन में
पेज 19 पर है,
हाँ,
उसमें है कि परिणाम दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। वहाँ जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम दैव या कर्म के निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा वो
अबुद्धिपूर्वक। हाँ, वो जो ये दूसरी अपेक्षा बताई ना, हम जो सोच समझ कर करते वो बुद्धिपूर्वक, और हम चाहते नहीं बन कर्म का तीव्र उदय हो जावे और वैसे होते हैं तो उसको अभी, इसीलिए जो जहां अपेक्षा है दोनों ही अपेक्षा आती है, और शास्त्र में दोनों अपेक्षाएं बताई, जैसे श्रेणी में जो राग है ना वहां पर पूर्ण वितराग तो नहीं हुआ है, और श्रेणी है वो ध्यान अवस्था है, सातवा गुणस्थान हो या आठवां नवा दसवां हो वो ध्यान अवस्था है पूर्ण, वो कुछ बाहर उसका लक्ष्य है नहीं है, फिर भी वहां जो राग विद्यमान है जो केवल यानी जान रहे हैं तो उसको हम अबुद्धिपूर्वक राग कहें, दोनों ही अपेक्षा शास्त्र में आती है।
गुरुदेव जो पंचाध्याय के जो व्यवहार नहीं है उसमें अबुद्धिपूर्वक राग को लेते थे,
हाँ पंचाध्यायी के जो है ना नए उसमें वो लगते थे अबुद्धिपूर्वक राग। ये तो अलग अलग देखो शास्त्रों में तो कितनी अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करके उनका तो अभिप्राय हमको समझाने का है क्योंकि हम समझ जावे। बाकी तो सब सार एक ही है ना, तू भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, सभी शास्त्रों का सार तो इतना ही है। नहीं मानते ना तो और कठिन कठिन करके समझो बेटा क्या करें। क्योंकि लोग पूछे ये कर्मों को इतना जानने की क्या आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है, तू जानता नहीं तू मानता नहीं क्या करे। तो ये सब इतना है फिर भी ये इतनी दृढ़ता है इसमें तो। और ऐसा होता है ना जब हम तत्व की रुचि होती है तो अधिक डिटेल में जानने की सहज उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती ही है। और ये सारा सत्य जो है अपने पास अपने ग्रंथों में है, हमारे लिए आचार्य छोड़ के गए हैं। तो वो लिखने का उनको पता नहीं था, शुद्धात्मा में लीन हो जाए लिखने विखने का कार्य नहीं करे। हाँ फिर भी कमजोरी वश अंदर स्थिरता नहीं होती है तब सहज ऐसे लिखने के भाव आते हैं। और लिखने के काल में भी उपयोग की इतनी एकाग्रता हो जाती है, सूक्ष्मता होता ही है, वहां से उपयोग हटकर अपने आत्मा में चला जाता है। ये फिजूल की बातें नहीं है। शास्त्र में एक जो बीज सम्यक्त्व नाम का सम्यक्त्व दी है, सुना है कभी? सम्यक्त्व के भी बहुत प्रकार, आज्ञा सम्यक्त्व यानी जो जिनेन्द्र भगवान के चरणानुयोग के भी जो शास्त्र है उसके अनुसार भी मान लेता है कि उसके अभ्यास ज्यादा नहीं है परंतु उसने भगवान ने कहा है ना ये सत्य है, और फिर वो अपने आत्मा की दृष्टि करता है और अनुभव हो जाता है, सरल होता है, कुछ ज्यादा अभ्यास नहीं है। दूसरा बहुत सारे प्रकार है, उसमें से वन ऑफ देम इज बीज सम्यक्त्व। बीज यानी जो बीज गणित आदि, जो गणित के जो डिफिकल्ट जो करणानुयोग में बहुत सारे गणित के विषय है तो उसको जब गणित समझना है, करणानुयोग समझना है, ये कर्मों की इतनी सारी कितने कर्म बनते हैं कैसे होते हैं उसमें क्या क्या होती है एक समय में कितने खिरते हैं उसका गणित सब, तो उसमें उपयोग की इतनी एकाग्रता होती है, उपयोग इतना सूक्ष्म है क्योंकि छोटी सूक्ष्म चीजों को पकड़ने के लिए ज्ञान की एकाग्रता चाहिए। जैसे हमें वो कोयला पकड़ना है, वो चिमटा चलेगा ना कोयले का, और वो हीरा हमको ऐसा यहां से यहां रखना है तो वो कोयले वाला चलेगा चिमटा जिससे हम रोटली ऐसा नहीं चलेगा उसके लिए वो छोटी चिमटी चाहिए उसको पकड़ने के लिए। ऐसे सूक्ष्म बातों को पकड़ने के लिए ज्ञान का उपयोग की सूक्ष्मता, सूक्ष्म उसकी अत्यंत एकाग्रता चाहिए। तो उस एकाग्रता से छूटकर और ऐसे महिमा आती है केवल ज्ञान की और अपने स्वभाव की, तो वहां से छूटकर अपने आप में ऐसे वो ऐसा जाके बैठना पड़ता नहीं बीच में जाके, बस सामने पड़ा है शास्त्र और फिर ऐसे विचारों में एकाग्र हो जाता है कि अपने आत्मा को पकड़ लेता है। शास्त्र लिखते लिखते भी कितनी बार अंतरंग में मुनि भी अंतरंग में जाते हैं, जैसे ज्ञाता स्वभाव में डुबकी लगा लगाते हुए वो लिखते रहते हैं, तो ये सहज होता है। तो ये जो शुभ भाव भी आता है और वो तो शुद्धोपयोग की ही मुख्यता उनके भी रहती है। देखो शिवभूति का जो उदाहरण दिया है ना शास्त्र में, तो उनके तो बहुत ज्यादा क्षोभम ज्ञान नहीं था और मुनि ने तो मा तुष मा रुष कह दिया, तो वो भी उनके ख्याल में जा, मा तुषे ने तुषे ने संतुष्ट होना, ऋषि यानी रोष यानी राग द्वेष मत कर, यानी राग द्वेष रहित ऐसा अपना स्वभाव है उसका आश्रय कर ऐसा कहना था। सम्यक दृष्टि तो थे परंतु शास्त्र का ज्यादा अनुभव यानी अभ्यास नहीं था, तो ये मा तुष ऋष भी नहीं। सात तत्वों का तो प्रयोजनभूत तत्वों का तो भाव भाषण और आत्मानुभूति तो थी परंतु ये शब्द भूल गए। और जाते हुए रास्ते में क्या सुना, कोई एक महिला वो उड़द लेके उसको कान रही थी, क्या कहते आप, हाँ खानना। तो दूसरे ने पूछा तू क्या कर रही है, तो उसने कहा ये तुष मां से भिन्न कर रही हूं, यानी उसका जो ऊपर का जो फोफरा है वो मैं भिन्न कर रही, छिलका उसको भिन्न कर रही हूं। तो ये ख्याल में आता है उनको, उसका भाव पकड़ लिया, अरे मैं भिन्न हूं और ये सारे भिन्न हो रहा इस करके के अंतरंग में जो स्थिरता जम गई उनकी, तो फिर आगे उन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जब ये शिवभूति की बात आती है शास्त्र में तो जिसको अभ्यास नहीं करना है उनको वो बरोबर याद आती है, परंतु ऐसा नियम है जब कोई जीव श्रेणी मानते हैं तो सभी कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञानावरण कर्मों की निर्जरा के साथ साथ ज्ञानावरण कर्मों का अनुभाग भी अत्यंत मंद होता चला जाता है और श्रेणी मांडते हुए उनके ज्ञान का उघाड़ बहुत कुछ हो जाता है। वो भले वो ज्ञान के उघाड़ में शास्त्र नहीं लिखे और बाकी कुछ नहीं किए, परंतु वो सारी बुद्धियां रिद्धियां सारी प्रकट होती होते उनके वो श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं समझना कि वो कुछ नहीं जानते थे और ऐसा हो गया। मेजोरिटी तो सभी तो ये दस पूर्व के धारी, चौदह पूर्व के धारी, द्वादशांग के ज्ञानी हो जाते हैं, बाय द टाइम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ में आए ना? क्योंकि हमें जो एक उदाहरण आता है तिरियन चौंक भी होता है, तो तिरियन चौंक होता है तो हमें ये क्यों पढ़ना आवश्यक है? पर हमें तो रोज वैरायटी क्यों चाहिए खाने में? सुबह शाम जय श्री बहन है इसलिए। वहां तो कोई तिरियन चौंक को याद नहीं करता है। दो जोड़ी कपड़े से काम चलेगा, तो उसमें भी रोज अलग अलग चाहिए, उसमें भी फैशन चाहिए, उसमें भी वैरायटी चाहिए, खाने में भी वैरायटी चाहिए, तभी कोई सीरियंस को याद नहीं करता। तो ये तो हम बहानेबाजी करते हैं, शास्त्र के उदाहरण लेके हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं और अपनी अरुचि प्रकट करते हैं। जो ऐसे पूछते हैं तो उसमें उनकी अरुचि प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो समझता है देखो मैंने शास्त्र की भाषा में कैसे चुप बिठाया, सामने वाला समझता है ये कितना मूर्ख है। क्या करे अभी। चलो अभी अपना समय हो चुका है, यही रुकते हैं। जब लो 2400 भगवान की जय।